प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय। इस प्रोग्राम में मैं ईला आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह सात सिरों से जुड़कर ही संगीत की रचना होती है, अगर एक भी सुर अच्छा ना हो तो संगीत गड़बड़ा जाता है। उसी तरह अगर हमारे सारे बॉडी ऑर्गन सुचारू रूप से कार्य करें तो ही शरीर अच्छी रूप से चल सकता है। अदरवाइज वी कैन बी सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अगर दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को कहा जाए तो वो होगा कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में हारमोनी की ज़रूरत है। तो आइए हारमोनी के बारे में बात करते हैं बी के तृप्ति जी से। ओम शांति सिस्टर तृप्ति।
ओम शांति।
तो सिस्टर तृप्ति, ये हारमोनी क्या है और हमारी बॉडी में हारमोनी की आवश्यकता क्यों है? प्रकृति, कुदरत, इस प्रकृति की खूबसूरती पुरातन काल से ही किताबों में, कविताओं में, शेर व शायरियों में, गजलों में और तरह तरह की किताबों में इस खूबसूरती का गायन है। वेदों में, पुराणों में भी प्रकृति की खूबसूरती का उल्लेख है। तो यह प्रकृति जो पांचों तत्वों से बनी है और यह पांचों तत्वों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, गुण है, खूबसूरती है। तो पांचों तत्वों की विशेषताओं से बनी यह विशेष प्रकृति, यह खूबसूरत प्रकृति आज हम सबका मन मोह लेती है। उसी प्रकार यह शरीर भी पांचों तत्वों से बना हुआ है और इस पांचों तत्वों से बने शरीर में भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं और हर पार्ट की एक अपनी विशेषता है, हर पार्ट का अपना एक गुण है, अपना एक कार्य करने की पद्धति है और अपनी ही रीति से वह कार्य करता है। पर जिस प्रकार हम प्रकृति को देखते हैं तो दिन होती है फिर रात होती है, तो दिन की खूबसूरती अलग, रात की खूबसूरती अलग, पर वो दोनों कैसे होता है, दिन और रात एक हारमोनी में, एक सामंजस्य है। उसी प्रकार पानी की भी खूबसूरती है और वहाँ अग्नि माना सूर्य की भी खूबसूरती है, पर उन दोनों के बीच क्या है, हारमोनी। तो जब प्रकृति में हम देखते हैं पांचों तत्व हारमोनी के साथ कार्य करते हैं और बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं, उसी प्रकार शरीर में जब ये पांचों तत्व और पांचों तत्वों से बने ये ऑर्गन्स अपने अपने कार्य करें, अलग अलग कार्य करते हैं पर हारमोनी बद्ध तरीके से करते हैं, एक साथ सामंजस्य के साथ करते हैं, तभी यह शरीर कहलाता है। हम ये नहीं कहते कि हार्ट अलग है, ब्रेन अलग है, स्टमक अलग है, किडनी अलग है, इन फैक्ट इन सब ऑर्गन्स को अलग अलग हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो अलग अलग एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, एग्जिस्ट करते हैं एक साथ हारमोनीबद्ध तरीके से। तो ऐसा भी होता है कि अगर एक ऑर्गन अगर बीमारियों से पीड़ित हो जाता है तो धीरे धीरे भय बना रहता है कि कहीं दूसरे ऑर्गन्स ना धीरे धीरे बीमारी से ग्रसित हो जाए। तो दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि कभी एक ऑर्गन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो वह क्या करता है, दूसरे वीकर ऑर्गन्स को भी कवर करने की कोशिश करता है। जैसे नेत्रहीन में अगर नेत्र कमजोर हैं, आंखों से वे देख नहीं सकते, तो उनके कान, उनकी नाक इस आंख की कमजोरी को कवर करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ हारमोनी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमने देखा कि सूर्य की किरणें सात रंग, वो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आपस में हारमोनी रखते हैं और तब हमें सफ़ेद रंग की किरणें नजर आती हैं जो हमारी लाइफ के लिए अति आवश्यक है। उसी प्रकार म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, पर उन 7 नोट्स को सही तरीके से आपस में हारमोनी के साथ जब हम यूज करते हैं तो बहुत ही सुंदर हम म्यूजिक प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे कानों में बहुत ही अच्छा लगता है और कभी कभी यही म्यूजिक हमें हील भी करता है। तो जब हम देखते हैं कि अलग अलग भिन्न भिन्न ऑर्गन्स हैं बॉडी में, लेकिन वो सब कैसे कार्य करते हैं हारमोनी में, तो सवाल ये उठता है कि आपस में हमारे में इतनी हारमोनी है कैसे? ऐसा क्या है हमारी बॉडी में जो इन सारे बॉडी पार्ट्स को इतनी हारमोनी में बनाए रखता है? तो हम देखते हैं हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, वो हॉर्मोन्स जब सीक्रेट करते हैं तो ये हॉर्मोन्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स का संतुलन बनाए रखने में और आपस में हारमोनी बनाए रखने में सहायक होते हैं। और यही नहीं, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, अगर ये सही तरीके से जेनरेट होते हैं तो हमारे शरीर के लिए ही नहीं, हमारे मन के लिए और हमारे विकास के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होता है।
हाँ सही है, अगर पुरातन काल से भी हम देखें तो हमारे बुजुर्ग सुबह उठते से ही भगवान का नाम लेते थे। दादा दादी हमें कहते थे कि बेटा सुबह उठो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो, भगवान को प्रणाम करो। तो शायद इसीलिए कहते होंगे।
इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह 4 से 5 का जो समय होता है, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, इसलिए उसे अमृत वेला कहा जाता है कि उस वक्त हमारे शरीर में अमृत का निर्माण होता है। और वह कैसे होता है? 4 से 5 के समय हमारे जो ग्लैंड्स हैं, कौन से? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स, जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, तब इनकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। हाइपोथैलेमस 9 तरह के हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी 8 तरह के हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है और पीनियल ग्लैंड 1 हॉर्मोन को सिक्रेट करती है। इस प्रकार 18 हॉर्मोन जनरेट होते हैं सुबह सुबह 4 से 5, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
तो इसीलिए शायद बच्चों को कहा जाता होगा कि बेटा सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करो तो ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा समझ आएगा। इवन ये भी कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए तो उसका ज़्यादा असर होता है।
बिल्कुल सही। और यही नहीं, 5 के बाद भी हमारे शरीर में ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती रहती हैं। थायराइड और पैराथायराइड, जिन्हें बॉडी का एनर्जी मीटर कहा जाता है, वे भी 5 से 6 बजे तक हॉर्मोन्स जेनरेट करती हैं और 6 से 7 तक पैनक्रियाज इंसुलिन जेनरेट करती है। और इस इंसुलिन को हम क्या कहते हैं? इंसुलिन इट्स लाइक अ करेंसी। ओके, अगर हमारे पास करेंसी है, पैसे हैं, तो हम दुकान से जाकर कुछ खरीद सकते हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। पर अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो भले ही दुकान में कितना ही सारा सामान हो पर वह हमारे किसी काम का नहीं। तो ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में कितनी भी शुगर हो, हम कितनी भी शुगर खाएं, पर अगर इंसुलिन की कमी है तो वह ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इतनी महत्वपूर्ण इंसुलिन जो एक हार्मोन है, वह कब जनरेट होती है? 6 से 7 इस समय के बीच में। और जब हम 7 से 8 इस समय को देखते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड ये एक्टिवेट होती हैं और ये हॉर्मोन्स क्रिएट करती हैं। और कौन से हॉर्मोन्स क्रिएट करती हैं? जिनसे हमें शक्ति मिलती है, जिनसे हमें बल मिलता है, हमारा मानसिक और शारीरिक बल में इससे विकास होता है, उन्नति होती है। तो इस प्रकार सुबह का समय, सुबह 4 से लेकर 8 बजे का समय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए अति आवश्यक है और ज़रूरी है कि हम इस समय को मैक्सिमाइज करें, इसे यूज़ करें, इसके पोटेंशियल को यूज़ करें, ताकि हम अपने आप को इस समय में रिचार्ज कर सकें। क्योंकि हमने यह देखा है कि मैक्सिमम हॉर्मोन्स का जनरेशन इस समय होता है और मैक्सिमम एनर्जी जो हमारे शरीर को मिलती है वो इस समय मिलती है।
तो सिस्टर तृप्ति, क्या इसका यह अर्थ हुआ जो लोग सुबह सुबह नहीं उठ पाते वो इन हार्मोन्स का उपयोग नहीं कर पाते या उनमें इन हार्मोन्स की कमी रहती है? ऐसा कुछ है क्या?
यह पाया गया है कि जो लोग सुबह सुबह उठते हैं, जिन्हें सुबह उठने की आदत होती है, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं दिन भर, उनकी बुद्धि का स्तर ऊपर पाया गया है, उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल हायर पाए गए हैं, और जो लोग जिन्हें देर से उठने की आदत होती है उनमें यह पाया गया है थोड़ा सा आलस्य होता है, थोड़ी सी लेजीनेस होती है, और जिसके कारण उनके बॉडी में एनर्जी लेवल कम पाया जाता है, क्योंकि सुबह सुबह वो उतने एनर्जाइज नहीं हो पाते और वो लॉस ऑफ एनर्जी दिन भर के उनके कार्य में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये ज़रूरी है, इस सुबह सुबह का ये जो हमें गॉड गिफ्ट है, जो हमें कुदरत का गिफ्ट मिलता है, उसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, सुबह सुबह उठकर अपने आप को पॉजिटिविटी से भरें, पॉजिटिव थॉट से भरें, क्योंकि हम जितनी पॉजिटिविटी अपने अंदर सुबह सुबह भरेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी दिन भर चलेगी, अपने दिन भर के कार्य में वह पॉजिटिविटी हम यूज़ कर सकेंगे और अपने जीवन को ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगे, अल्टीमेटली एक ज़्यादा ही सुखमय जीवन का आनंद ले सकेंगे।
तो सिस्टर तृप्ति, यह जो सुबह सुबह हमारी बॉडी में हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं, तो ये हमारे मन के लिए इम्पॉर्टेंट है या हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इसका उपयोग हम कैसे करते हैं?
तो ये हार्मोन्स जितना हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण है हमारे मन के लिए भी। ब्रेन के जो ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स, और उनसे जो हार्मोन सिक्रीट होती हैं, वे हमारे मन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मन ही नहीं, लेकिन बुद्धि का विकास भी इन ग्लैंड्स के आधार पर होता है, और इसलिए कहते हैं सुबह सुबह जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके बुद्धि का और अधिक विकास होता है। तो यह मन और बुद्धि के लेवल पर कार्य तो करते ही हैं, पर पीछे ब्रेन जो कि फिजिकल ऑर्गन है, यह उसके भी ब्रेन के डेवलपमेंट में भी सहायक होते हैं। ब्रेन जो कि कंट्रोल यूनिट है, उसका कोऑर्डिनेशन इस बॉडी पार्ट्स के साथ यह होता है इन हार्मोन्स के आधार पर, और इस प्रकार से ये हार्मोन्स हार्मोनी स्थापित करते हैं किसके बीच में, ब्रेन के बीच में और हमारे बॉडी और बॉडी पार्ट्स के बीच में। तो इस प्रकार से मन और बॉडी दोनों ही लेवल पर ये हार्मोन्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर हम थायराइड और पैराथायराइड को देखें, तो जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वह क्या करता है, इट्स लाइक एन एनर्जी मीटर, ओके, मीटर की तरह ये मीटर रीडिंग लेता रहता है, और बोन्स में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उस एब्जॉर्प्शन में ये सहायक होते हैं। और जब हम देखते हैं पैनक्रियास से जहाँ इंसुलिन का जेनरेशन होता है, तो जैसे कि हमने देखा कि अगर ब्लड में अगर शुगर को हमें एब्जॉर्ब कराना है तो वह इंसुलिन के मदद से होता है। और अगर एड्रिनल ग्लैंड्स को देखें, तो हमने क्या देखा, यह शरीर को भी शक्ति मिलती है एड्रिनल ग्लैंड्स के हॉर्मोन सिक्रेशन से, और शरीर माना हड्डी और बोन्स और मसल्स के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही हमारे मानसिक बल के विकास में भी यह उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आवश्यक है। तो हमने यह देखा कि जो हम हार्मोनी की बात करते हैं, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, उनमें तो हार्मोनी बहुत आवश्यक है ही, और अगर हम सही तरीके से अपने शरीर को यूज़ करें, जल्दी जल्दी सुबह अगर उठने की आदत डालें, और सुबह उठ के सिर्फ बैठना नहीं है, या सुबह उठ के कोई नेगेटिव थॉट्स अगर करें, तो इस सारे सिस्टम का, इस बॉडी का हमें उतना उपयोग नहीं हो सकेगा। लेकिन सुबह सुबह उठकर अपने आप को चार्ज करना है, किससे, पॉजिटिव थॉट से, तभी हम अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार अगर मोबाइल फ़ोन को, सेल फोन को सुबह सुबह चार्ज नहीं किया, बिना चार्ज किए ही हम सेल फोन को अपने साथ ले जाते हैं दिन भर के काम पे, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी बैटरी डाउन होने लगती है, और डाउन होते होते फिर तो वह बंद ही पड़ जाता है, और फिर तब तक वह किसी काम का नहीं होता जब तक हम फिर घर पर लौट कर उसे चार्ज न करें। तो ठीक इसी प्रकार हमारी भी ये जो शरीर है, हमारा जो ये मन है, उसे भी हम सुबह सुबह चार्ज करते हैं पॉजिटिव थॉट्स देकर, अच्छे विचार देकर। इसलिए कहते हैं सुबह सुबह भगवान का नाम लो, सुबह सुबह शांति के थॉट्स, प्यार के थॉट्स, लवफुल थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, खुशी से भरे विचार, आनंद से भरे विचार। अगर इन सब इस प्रकार के विचार, और सिर्फ ये विचार ऊपरी स्तर पर नहीं, बट डीप फीलिंग ऑफ पीस, डीप फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, डीप फीलिंग ऑफ लव, जब इस प्रकार के थॉट्स हम अपने मन को देते हैं, तब क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल सुबह का मैक्सिमाइज होता है और तब हम अपने आप को, अपनी बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करते हैं, जो दिन भर हमारे साथ काम करती है, हमारे सारे कामों को आसान बनाती रहती है और खुशी खुशी आनंद के एनवायरनमेंट में, पीसफुलनेस में हम सारा दिन काम करते हैं। वह काम ऑफिस में हो, या वह काम गृहिणी घर में करे, या फिर वह काम बच्चा स्कूल में करे, पर हम सब के लिए सुबह सुबह अपने आप को चार्ज करना पॉजिटिव थॉट से बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि अगर हम सुबह सुबह उठे भी, पर अगर हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स रहे, ईर्ष्या और द्वेष की भावना रही, तो हम खुद को चार्ज नहीं कर सकते। हमें ज़रूरी है कि सुबह सुबह उठें, पॉजिटिव थॉट्स मन में रखें, ताकि हम खुद को चार्ज करें, हमारी बॉडी में और ऑर्गन्स में हारमोनी ला सकें और सदैव स्वस्थ रह सकें। बिल्कुल लीला, आपने बिल्कुल सही बात की। और जब हम हारमोनी की बात करते हैं, पांचों तत्वों से बने इस शरीर में हारमोनी की बात करते हैं, तो एक और बात है जो हमें जान लेने की आवश्यकता है कि यह शरीर जिस प्रकार से पांच तत्वों से बना है, उसी प्रकार यह कुदरत, यह नेचर, यह भी पांच तत्वों से बनी है। तो हम यह देखते हैं कि हमारे शरीर में और इस कुदरत में बहुत सामंजस्य है, बहुत ऐसी बातें हैं जो एक समान हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम कुदरत से सीख सकते हैं, कुदरत को देख सकते हैं, और ऐसी कितनी ही बातें हैं जो कुदरत से सीख के अगर हम उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन और अच्छा हो सकता है, हमारा जीवन और सुखी हो सकता है। अगर इसी बात को हम और आगे समझने की कोशिश करें, तो जिस प्रकार से अभी हमने बात की हारमोनी की, इस शरीर की, पांचों तत्वों से बने इस शरीर की और पांचों तत्वों से बने इन बॉडी पार्ट्स की, वैसे ही अब हम अगर बात करें पांचों तत्वों से बने इस कुदरत की, तो कुदरत के हम किसी भी साइकिल को लें, अगर हम कुदरत को देखें तो सन क्या करता है, सूर्य गर्मी प्रदान करता है, और कितनी गर्मी प्रदान करता है, उतनी ही गर्माहट प्रदान करता है जितनी कि इस लाइफ के लिए एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। और अगर इसके टेम्परेचर में थोड़ी सी भी कमी या ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो क्या होता है, तुरंत हमारा जीवन इम्पैक्ट हो जाता है। अगर थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है तो आइस का फॉर्मेशन पोल्स पर ज़्यादा होने लगता है, और फिर क्या होता है कि वेजिटेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, गर्मी न होने के कारण उत्पाद पर इम्पैक्ट पड़ता है, ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, बीमारियों पर इम्पैक्ट पड़ता है। और वहीं देखें, थोड़ा सा गर्म हो तो क्या होता है, वही आइस जो जमी हुई है पोल्स पर वह पिघलने लगती है, पिघलने लगती है तो क्या होता है, नदियाँ उनमें बाढ़ आने लगती है, ह्यूमन लाइफ फिर से प्रॉब्लम में आ जाती है, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, एनिमल लाइफ, वेजिटेशन, सब जगह इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ज़रूरत है इक्विलिब्रियम की। और जब हम इक्विलिब्रियम की बात करें, तो एक तत्व की अपने आप में जितनी ज़रूरत है कि वह स्टेडी रहे, स्टेबल रहे, उतना ही ज़रूरत है कि उसका इंटरैक्शन दूसरे एलिमेंट के साथ भी उतने ही सही तरीके से, उतने ही स्टेबिलिटी से और उतने ही इक्विलिब्रियम के साथ हो जितना कि आवश्यक है। तो हम देखते हैं पानी, जब तो पानी के साथ क्या होता है, जब सूर्य की गर्मी हमें मिलती है तो क्या होता है, रिवर्स में, ओशंस में, समुद्र में जो पानी है वो वाफ बनकर ऊपर आ जाता है, बादल बन जाते हैं। माना यहाँ क्या हुआ, हमने देखा कि फायर एलिमेंट का इंटरैक्शन हुआ वाटर एलिमेंट के साथ, पर उन दोनों ने क्या क्रिएट किया, एक पॉजिटिव आउटपुट, क्लाउड, तो दोनों ही विभिन्न प्रकृति के हैं, उन दोनों के नेचर अलग हैं, उन दोनों के गुण अलग हैं, पर वो दोनों साथ क्यों आते हैं? ताकि ह्यूमन लाइफ के लिए वो कोई एक बेनिफिशियल आउटपुट क्रिएट कर सके, जैसे कि अभी हमने देखा बादलों का निर्माण। और इसे हम पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ही वो बादल हैं जो लैंड पे आते हैं। अगेन, लैंड पर आते हैं अपनी मर्जी से नहीं, तब जब तीसरा एलिमेंट वायु जब उस पर कार्य करती है और ब्रीज उसको लेकर आती है लैंड पर, तब क्या होता है? वह बाकी दूसरा एक और कौन से एलिमेंट की बात करें, जब हम लैंड के बारे में बात करते हैं, धरती के बारे में बात करते हैं, तो हम पृथ्वी इस तत्व के बारे में, अर्थ इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तब वह बादल बरसते हैं, पानी को बरसाते हैं, कहाँ? इस लैंड पर। और अल्टीमेटली क्या होता है, इस लैंड पर उपजाऊ, ये लैंड उपजाऊ बनती है और वेजिटेशन, इस पर एग्रीकल्चर, तरह तरह के उत्पाद इस धरती से पैदा होते हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बेनिफिशियल हैं। तो जैसे कि हमने देखा प्रकृति के पांचों तत्व, उनका नेचर अलग है, उनके गुण अलग हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, लेकिन ये सब अलग होते हुए भी ज़रूरत है कि वह अपने आप में स्टेबिलिटी मेंटेन करें, अपने आप में इक्विलिब्रियम मेंटेन करें, और सिर्फ अपने आप में नहीं, जब वो एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करें तब भी वह इक्विलिब्रियम के साथ, स्टेबिलिटी के साथ जब वो इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है? सभी का कल्याण होता है, आउटपुट पॉजिटिव होता है और ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, प्रकृति भी बहुत सुंदर नजर आने लगती है। तो जैसे हमने देखा प्रकृति के पांचों तत्वों का इक्विलिब्रियम में रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तत्व का इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होता है, अगर फायर एलिमेंट माना सन, उसकी गर्मी में ज़रा कम या ज़्यादा महसूसता होती है उसके गर्मी की, तो तुरंत इफेक्ट क्या दिखता है? ड्रॉट आ जाता है, अकाल आ जाता है, सूखा पड़ जाता है अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए। वैसे ही पानी जो बहुत ही खूबसूरत है, इट्स लाइफ, पानी को कहते हैं ना जल, जल क्या है? जीवन है। पर यही जीवन फिर जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है अगर जल प्रवाह ज़्यादा बढ़ जाता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो हमारे लाइफ के लिए यही जल जो जीवन था, अब यही हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। धरती को माता कहते हैं। माता क्यों कहते हैं? क्योंकि माता क्या करती है? बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। उसी प्रकार यह धरती भी क्या करती है? इस धरती पर खेती लहलाती है, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर के आधार पे हम बच्चों को खाद्य पदार्थ मिलते हैं और जिससे जीवन चलता है, हम सारे बच्चे माता की आंचल में पलते हैं, बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। तो पर यही माता क्या होता है धरती में? अगर इसमें अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होता है? यही जो सुखदायी थी, जीवनदायिनी माता थी, वही उसी के कारण कभी कभी कुछ लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कुदरत के ये जो पांचों तत्व हैं, ये बहुत सुखदायी हैं, हम मनुष्यों के जीवन का साधन है, स्रोत है। पर किसी भी एलिमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं भी इक्विलिब्रियम में, कहीं भी स्टेबिलिटी में कमी आ जाए, तो क्या होता है? इससे जीवन को बहुत नुकसान होता है।
सिस्टर तृप्ति, हमें आज हारमोनी के बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। जिस तरह संगीत में हारमोनी की ज़रूरत है, जीवन में हारमोनी की ज़रूरत है, उसी तरह शरीर में, ऑर्गन्स में हारमोनी की ज़रूरत है। अगर हमारे ऑर्गन्स में हारमोनी होगी तो हम सदैव स्वस्थ रह पाएंगे। आज से हमें क्या करना है? तो आज से हम सभी को सुबह जल्दी उठना है, पॉजिटिव थॉट्स मन में रखने हैं, खुद को चार्ज करना है ताकि जीवन भर के कार्य के लिए हमें एनर्जी मिल पाए। हम सब भिन्न भिन्न लोग हैं, तो हमारी तकलीफें भी भिन्न भिन्न हैं, हमारी परेशानियां भी भिन्न भिन्न हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को फोकस करते हुए हमारे प्रोग्राम में दिखाने का प्रयत्न किया है। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो हमें लिख भेजिए, हमें अपने प्रोग्राम में उसको सम्मिलित करके आनंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति,
ओम शांति।
मैं प्रभा देवी बॉम्बे से आया हूँ। पहले टेक्सटाइल मिल में बहुत काम करता था, यानी बहुत क्रोध भी आता था, काम नहीं हुआ तो क्रोध आता था। तो अभी ये कोर्स लेने के बाद मिल में इतनी बढ़ोतरी हो गई, काम भी हो गया, मिल में दो दो स्ट्राइक्स हुए थे उसको भी सुलझा पाया, मैनेजमेंट और लेबर में समझौता लाना भी हो गया। तो इस हिसाब से अब घर में भी कोई तनाव वगैरह था वो भी अभी नहीं है।
अनादि है शिव, अनंत है जीवन मधुबन, शिव बसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव वसंत है। सूर्य हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है।
सत्यम शिवम सुंदरम,
यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है।
सत्यम शिवम
समुद्र है हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाएं, शिव सहज समर्पण स्वीकार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव वसंत है।